अध्याय साजिशें, जब रिश्ते सांसों पर कब्जा चाहते हैं। स्थान, राजवंशी हवेली, तीसरी मंजिल का दक्षिणी कमरा। समय, रात के 9:30 बजे। अखिल के पिता का कमरा था। पुरानी लकड़ी की अलमारी, ऊंचे पर्दे और एक भारी झूमर जो अब भी धीमे धीमे झूलता था, जैसे वो किसी पुराने राज की लोरी गा रहा हो। कमरे में अखिल की माँ खड़ी थी, साड़ी का पल्लू कंधे पर सावधानी से जमाया हुआ, होठों पर हल्का सा तनाव और माथे पर बिंदी, जो आज किसी ताज की तरह नहीं बल्कि एक चिंता की चिपकी हुई छाया थी। सामने शालिनी खड़ी थी, हल्के हरे रंग की चूड़ीदार सूट सलवार में, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा तूफान पल रहा था। मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती आंटी, चाहे जो हो जाए, शालिनी ने कहा। हर शब्द में आग थी, लेकिन आवाज में करुणा का मुखौटा। भावना ने उसकी ओर देखा, फिर गहरी सांस ली। मैं जानती हूँ शालिनी, उन्होंने धीमे से कहा। मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ। तुम ही इस घर की बहू हो, दिल से, संस्कार से और अखिल के साथ बिताए हर पल से। शालिनी की आंखों में एक पल के लिए पानी तैरने लगा। फिर क्यों? उसकी आवाज कांप उठी। क्यों उस लड़की को इस घर में लाया गया? सुमित्रा ने आंखें बंद की, फिर दीवार की ओर देखने लगी, जैसे इतिहास की कोई पुरानी गलती टटोल रही हूँ। कुछ फैसले मजबूरी में लिए जाते हैं शालिनी, राजनीतिक दबाव, खानदानी गठजोड़, ये सब तुम्हें अब समझना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की इस घर की मालकिन बन जाए। शालिनी अब तेजी से बोलने लगी। वो लड़की, वो तो अपने कपड़ों से भी इस घर की रिवायत नहीं निभा सकती। आज जब मैंने उसे लहंगे में सीढ़ियों से चढ़ते देखा तो लगा जैसे किसी नौटंकी में कोई नाचने वाली घुसाई हो। उसकी चाल में गरिमा नहीं, उसकी आंखों में नजाकत नहीं, वो राजवंशी खानदान की बहू बनने लायक नहीं है। सुमित्रा के होठों पर एक कड़ा व्यंग्य उभरा। राजवंशी बहू सिर्फ वो बनती है जो परिवार की शान को समझती है, और रैना वो लड़की नहीं समझेगी कभी, ना उसकी परवरिश वैसी है ना उसकी औकात। कमरे में एक सन्नाटा गूंजने लगा। फिर सुमित्रा ने धीरे धीरे कहा, तुम चिंता मत करो शालिनी, ये सब कुछ बस कुछ दिनों की बात है। अखिल उससे नफरत करता है और मैं उसे इस घर की हवा भी चैन से नहीं लेने दूंगी। शालिनी की आंखें चमकने लगी। मुझे यकीन है आंटी, आप और मैं अगर साथ हैं तो उस लड़की की सांसें भी गिनती में रहेंगी। मैं अखिल को किसी और के साथ नहीं देख सकती। मैंने हर रात उस रिश्ते को जिया है और अब किसी कल की आई लड़की को अपनी जगह लेता नहीं देख सकती। सुमित्रा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। तुम्हारा अधिकार बनता है शालिनी, मेरे बेटे के दिल पर, इस घर के हर कोने पर, और मैं एक माँ की तरह नहीं, एक रक्षक की तरह तुम्हारे साथ हूँ। शालिनी ने उनकी ओर देखा। एक अजीब सी दृढ़ता उसके चेहरे पर आ चुकी थी। अगर वो लड़की यहाँ रही तो अखिल को उससे दया भी हो सकती है, और दया ही सबसे खतरनाक रिश्ता बन जाती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, सुमित्रा ने गंभीर स्वर में कहा। तो तय हो गया, उसे इस घर में चैन से जीने नहीं देंगे। हर रोज उसे एहसास होगा कि वो यहाँ अजनबी है, और जब तक वो खुद ये हवेली छोड़ने की बात ना कहे तब तक हम खेल खेलते रहेंगे। एक पल को झूमर की रोशनी धीमी पड़ी। कमरे की खिड़की से आती रात की हवा जैसे किसी आने वाले तूफान की सुब्बुकाहट दे रही थी। शालिनी ने कमरे की ओर देखा। उसने धीरे धीरे कहा, वो समझती है कि ये हवेली उसे अपना लेगी, पर वो भूल रही है कि ये हवेलियां सिर्फ पतियों से नहीं सासों से चलती हैं, और इस घर की सास तो अब उसके खिलाफ खड़ी है। सुमित्रा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान सजीव नहीं थी, वो एक ढके हुए युद्ध की उद्घोषणा थी। उसके लिए चाय बनाने वाले हाथ यहाँ कांपेंगे, हर दीवार उसे घूरेगी, हर परंपरा उसे बेगानी लगेगी। हम उसे तब तक तोड़ेंगे जब तक वो खुद ना कहे कि मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। दोनों औरतें अब आमने सामने थीं, एक ही लक्ष्य, एक ही क्रूर योजना के तहत। कल सुबह से ही शुरुआत होगी, सुमित्रा ने कहा। सिल्वर की थाली उसकी जगह शालिनी के आगे रखी जाएगी। रैना को सिर्फ कहने को बहू रखेंगे, पर हर रस्म, हर परंपरा शालिनी निभाएगी। शालिनी की आंखें चमक उठी। और अगर उसने विरोध किया, सुमित्रा ने जवाब दिया, तो वही होगा जो इस घर में होता आया है, उसे चुप करा दिया जाएगा मर्यादा के नाम पर। कमरे के कोने में एक तस्वीर थी, अखिल की बचपन की। सुमित्रा ने उसे देखा, फिर शालिनी की ओर मुड़ी। तुमने उसे तब चाहा था जब वो कुछ नहीं था, आज अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो दोष तुम्हारा नहीं, अब उसे वापस पाना तुम्हारा अधिकार है और मेरा कर्तव्य। बाहर हवेली के गलियारे में किसी नौकर के कदमों की आहट आई। दोनों औरतें चुप हो गईं, लेकिन कमरे के भीतर जो फैसला हुआ था वो सिर्फ एक लड़की के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक आत्मसम्मान, एक स्त्रीत्व और एक निर्दोष प्रेम के खिलाफ था। कमरा बंद हो गया, लेकिन अंदर उठी बातों की आवाज अब हवेली के कोनों में फैलने लगी थी। एक कोने में रामू काका खड़े थे, शायद अनजाने में इसी कमरे के पास से गुजरते हुए। वो रुक गए, शब्दों ने दरवाजा पार नहीं किया, लेकिन एहसास ने उसे जकड़ लिया। उसने सिर घुमाकर दरवाजे की ओर देखा, और पहली बार उसे समझ में आया कि इस हवेली में बहुत कुछ नया होने वाला है।
कमरे की रोशनी अब धीमी हो गई थी, लेकिन उसमें बैठी दो औरतों के चेहरे किसी तूफान की तरह चमक रहे थे। शालिनी अपने होंठ दबाए, पलकों में जहर लिए गहरी सांस लेकर फिर से बोली, आपको शायद पता नहीं आंटी, वो लड़की बहुत चालाक है। उसके चेहरे की मासूमियत देखिए और बातों की मिठास, पर अंदर से वो एक धीमा जहर है जो ना धीरे धीरे घर तोड़ेगी ना रिश्ते बचे रहने देगी। सुमित्रा गहरी नजर से शालिनी को देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैं भी अब देख रही हूँ। वो जैसे पांव धरती है वैसा लगता है जैसे इस हवेली पर बोझ पड़ता है। शालिनी तेज आवाज में कहने लगी, एक दिन वो अपने आंसुओं से इस घर की चौखट गीली करेगी। मैं उसे रोते हुए देखना चाहती हूँ, बिल्कुल अकेली बेबस, जिसे कोई सहारा न दे।